तो जब इंसान सफर करने लगे तो ये दुआ पढ़नी और ये सारी दुआओं को अपने साथ रखना, तो देखिए सारा वक्त ही इंसान का बोरियत में नहीं फिर गुजरेगा, फिर इंसान का अल्लाह की याद में ही गुजरेगा। क्योंकि सफर तो इंसान ने करना ही होता है, देखा सफर के बगैर तो जिंदगी नहीं, कहीं ना कहीं आपको जाना ही पड़ेगा, कभी बाजार भी जाना होगा, कभी कोई रिस्क की तलाश में कोई जॉब के लिए आपको निकलना होगा, कहीं ये सारे सफर ही है ना। तो इसलिए सफर में अल्लाह को याद करना और अल्लाह की इस नेमत को याद करना कि अल्लाह ताला ने मुझे सवारी भी दी है और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझे इसके ऊपर यानी काबू दिया, ये आपकी इबादत बना देगा सफर को। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन दुआएं ऐसी हैं जो जरूर कबूल होती हैं, एक मजलूम की दुआ, एक वालिद की दुआ और एक मुसाफिर की दुआ। तो अगर हम सफर में अपनी मगफिरत मांग रहे हैं और अल्लाह ताला से ये मांग रहे हैं कि अल्लाह हमें इसके मसलन है कि मेरे घर वालों की तेरी सुपुर्द में है अल्लाह मेरे घर वाले और उनकी हिफाजत करना और मेरी भी बख्शिश करना और मुझे नुकसान से बचाना और इस चीज़ के शर से और उससे और मुझे कोई ऐसा बुरा मंजर देखने से महफूज रखना, मेरा सफर आसान कर देना, मेरा साथी बन जाना, कितनी सारी हम दुआएं करें वो सारी फिर कबूल हो जाएंगी। तो सफर में दुआओं को जरूर साथ शामिल रखें। तरह सफर के और आदाब में थोड़े से सफर के आदाब देख लेते हैं। सफर के आदाब में ये है कि नंबर वन चीज, आपने कहीं दूर का अगर सफर करना है, ये नहीं कि अभी बाजार जा रहे हैं तो आप ये शुरू कर दें या आप जॉब पे रोज आपने जाना है तो शुरू कर दें, वो नहीं, मतलब आप किसी वाकई जिसको हम सफर कहते हैं उस पर निकलने लगे तो इस्तखारा जरूर कर लें। ये भी एक तरीका होता था, ये हमें बताया गया तरीका। तो इस्तखारा मतलब आप दो नफल पढ़ के फिर उसके बाद इस्तखारे की दुआ बस कर लीजिए, तो आपका इस्तखारा हो गया, ठीक है। फिर आप मशवरा भी कर सकते हैं, जैसे हमने सूरह शूरा पढ़ी है तो मशवरा करने वाला, जैसे इमाम इब्ने तैमिया फरमाते हैं कि जो कोई इस्तखारा कर ले और मखलूक से मशवरा कर ले वो कभी फिर नादिम नहीं होता, शर्मिंदा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए मशवरा कर लें, फिर अपने गुनाहों की माफी मांगना, जैसे यहाँ पे हमने बात पढ़ी है कि अपने सफर में अपने अल्लाह के हजूर अपने तौबा इस्तगफार जारी रखें, और सफर में जाने से पहले अगर किसी ने कोई जुल्म किया उसको माफ कर दें, किसी का माल आपके पास है तो उसको लौटा दें, कर्ज आपने अदा करना है उसको लौटा दें, किसी का ना नफका आपके जिम्मे है उसको अदा कर दें, किसी के साथ झगड़ा हुआ है तो उस झगड़े को खत्म कर लें, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि सफर से वापस मैं सलामती से पहुंचूंगी या नहीं। हम ये काम सिर्फ और सिर्फ जब हज पे जाने लगते हैं तब करते हैं, और भी तो सफर है जो सफर ही कहलाते हैं, सिर्फ हज का सफर तो सफर नहीं होता, दूसरे भी सफर होते हैं। अपना वसीयतनामा लिख लें, उसके ऊपर किसी अपने राजदार को, किसी अपने एतमाद वाले बंदे को गवाह बना लें, और जितने दिन आपने सफर में रहना उतने दिन आदमी है तो वो उसको चाहिए कि अपनी फैमिली के लिए खर्चा छोड़ के जाए, ये नहीं कि बस उनको ऐसे ही छोड़ के चला गया अब वो पीछे जो मर्जी करते रहेंगे ये किसी से भी मांगते फिरेंगे। फिर मुसाफिर के लिए यही बेहतर है कि अपने लिए भी ज्यादा राह साथ रखे, ये नहीं है कि रास्ते के अंदर खुद मोहताज होता फिरे और तब भी मांगता फिरे। और सफर के अंदर आदाब में ये भी है कि अपने साथियों के साथ जो आपके हमराह हैं सफर के उनके साथ नर्म गुफ्तगु करें। बाज दफा सफर में अगर गर्मी लग रही है या आप जैसे मसलन आप जो हज पे जाते हैं या और कोई सफर है उसमें गर्मी बहुत है धूप है तो अब आप चिड़चिड़े हो गए हैं और लोगों से टूट टूट के बात कर रहे हैं और बहुत रूड हो रहे हैं तो ये दुरुस्त नहीं है। अगर अल्लाह ने वसत दी हुई है तो अपने साथियों को खाना खिलाएं, दूसरों के साथ अच्छा एहसान का तरीका करें, क्योंकि साहिब जार के लिए भी जो है ना अच्छी उसके साथ उसने सलूक करने का कुरान में हुक्म है। और फिर कोशिश ये करनी चाहिए, सफर के आदाब में से एक अदब ये है कि मुसाफिर जो है वो अकेले सफर ना करे। तिर्मिजी की रिवायत है कि अकेला सवार शैतान है और दो सवार दो शैतान है और तीन सवार सही काफिला है, यानी कोशिश यही होनी चाहिए कि तीन सवार मिलके सफर करें। इससे क्या फायदा होता है कि आपकी एक सपोर्ट भी रहती है, आपको कोई अगर चीज पीछे छोड़ के जानी है तो आप किसी की हिफाजत में छोड़ के, मसलन बाथरूम आप जा रहे हैं तो किसी के पास रख के चीजें जा सकते हैं, कोई रास्ते में कोई मुश्किल हो जाए तो दूसरा भी आपके साथ होता है। तो इससे हमें जो हम अपनी लैंग्वेज में जिसको कहते हैं आप कार पूलिंग करें, कार पूलिंग बेहतरीन। अब ये नहीं हम क्यों अपनी गाड़ी में किसी को लेकर जाएं, मैं क्यों किसी को पिक करूं, मैं क्यों किसी को छोड़ूं, तब हमें बताया गया है कि आप साथ, अगर चलो आपकी गाड़ी फुल है, एक साथ एक और गाड़ी भी जा रही है, आगे पीछे सफर कर ले, उसको उसकी ताकीद की गई है। और फिर उस सफर के अंदर किसी को अमीर बना ले, ठीक है। और ये तक कहा गया है कि अगर अगर सफर में कोई इंसान मसलन है कोई वसीयत करना चाहता है, आपको पता है कुरान में उसका भी जिक्र है, फिर वो वसीयत भी कर सकता है उसके साथ कोई हो तो इसी तरह अगर अपने सफर के अंदर कोई नेक लोगों का साथ हो सके तो ये बहुत ही अच्छा है, ताकि उनकी सोहबत से भी फायदा हो सके। ये भी एक अगर कोशिश होनी चाहिए, इसी तरह कोशिश होनी चाहिए कि जुमेरात के दिन आप सफर शुरू करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात के दिन निकलना पसंद फरमाते थे, और ये नहीं, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा तो किसी और दिन भी जा सकते हैं, लेकिन मुस्तहब है यानी जुमेरात के दिन सफर करना। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा का जो सफर शुरू किया था वो हफ्ते के दिन शुरू किया था, तो अगर नहीं पॉसिबल हो रहा वो अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास चॉइस है तो फिर थर्सडेज को शुरू करें। और रात में सफर करना भी ठीक है, उसको भी मुस्तहब कहा गया, क्योंकि रात के वक्त में खामोशी होती है, ट्रैफिक नहीं होती, गर्दोगुबार इस तरह से वो चीजें नहीं होती, सुकून का टाइम होता है। और अरब में तो वैसे ही दिन के वक्त में बहुत गर्मी होती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात का सफर लाजिम पकड़ो, क्योंकि रात को जमीन लपेट दी जाती है, यानी आपका फासला जो दिन में आपको 2-3 घंटे का है वो रात में हो सकता है कि 1 घंटे में हो जाए। तो एक आदमी आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसने कहा कि मैं सफर का इरादा रखता हूँ, मुझे कोई वसीयत फरमाइए। तो आपने फरमाया अल्लाह से डरने को लाजिम पकड़ना, यानी तकवा, तकवा सफर के दौरान भी अल्लाह से डरते रहो, हर बुलंद जगह पे चढ़ते हुए अल्लाह अकबर कहना। और जब वो आदमी वापस मुड़ा तो आपने फरमाया ऐ अल्लाह इसके सफर की दूरी को लपेट दे और इसके सफर को आसान फरमा दे। यानी आप ये भी आप किसी मुसाफिर को दुआ दे सकते हैं कि अल्लाह जब वो जाने लगा अल्लाह के सफर को लपेट देना, यानी छोटा कर देना। बाज दफा होता है ना सफर 2 घंटे का, लेकिन 4 घंटे उसमें लग गए और लंबा हो गया, और बाज दफा सफर का पता ही नहीं चलता। हम कहते हैं पता ही नहीं चला मुझे तो कैसे ये सफर गुजर गया, तो अल्लाह ताला दूरी को लपेट देता है और सफर को आसान फरमा दे। तो ये भी एक उसके आदाब में से। और बुलंदी पे चढ़ते हुए जैसे जहाज आपका ऊपर को जा रहा है तो फिर उस वक्त अल्लाह अकबर, जहाज लैंड कर रहा है तो उस वक्त सुभान अल्लाह, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका था कि जब आप सफर करते थे तो इस तरह बुलंदी पे जाते थे तो ऐसे ही फरमाया करते थे। और फिर इसी तरह सफर के दौरान आप नफल नमाज भी पढ़ सकते हैं, इस वक्त को कीमती जानते हैं, क्योंकि बाज दफा हम ना गाड़ी चला रहे हैं, ना हम ट्रेन चला रहे हैं, ना हम जहाज चला रहे हैं, तो हम तो बस बैठे हैं फारिग और वेट करेंगे कब हम पहुंचेंगे। तो जहां हम दुआएं करें वहां पे नफली नमाज भी पढ़ सकते हैं, उसका बड़ा अच्छा मौका होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पे पढ़ा करते थे, सवारी जिस वक्त यानी सवार होते थे तो उस वक्त सवारी का मुंह किबला रुख कर लेते थे, उसके बाद सवारी जिस तरफ को भी हो जाती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज जारी रखते थे और फिर उस चीज की नहीं परवाह करते थे अगर वो किबले से हट भी गई सवारी। तो यानी जब आपकी गाड़ी का रुख किबला रुख हो जाए उस वक्त शुरू कर दें, उसके बाद हाईवे पे गाड़ी कहीं पे भी जा रही है उससे नहीं आपको फिक्र नहीं करनी कि अब किबला से डायरेक्शन हट गई है। और फिर जब जहां पे भी इंसान सफर करे तो हमें यही बताया गया कि वापस जल्द लौट आए जो ही आपका काम खत्म हो जाए, उसमें फिर डिले नहीं करना चाहिए कि अब आप किसी जगह गए हैं किसी काम से, अब काम वहां पे हो गया है लेकिन अब बस वैसे ही बस कि चलो कोई बात नहीं अब आए हैं तो अब ये भी कर लें, अब ये घूम भी लें, अब फलाने नहीं। फरमाया सफर अजाब का एक टुकड़ा है जो तुम में से किसी भी सफर करने वाले को खाने पीने और सोने से रोक देता है। यानी जब आप ट्रैवलिंग में होते हैं जितना मर्जी कंफर्टेबल ट्रैवलिंग हो लेकिन इंसान का नींद डिस्टर्ब होती है, इंसान का खाना पीना डिस्टर्ब होता है, नई जगह पे जाता है ना टाइमिंग का पता चल रहा है, और हमारे तो ऐसे सफर हैं कि दिन और रात का ही फर्क पड़ जाता है। तो लिहाजा जब कोई शख्स अपनी हाजत पूरी कर ले तो अपने घर की तरफ जल्द वापस लौट आए, ठीक है। और जब आपको मैंने बताया कि जब आप वापस आ रहे होंगे तो उस वक्त क्या पढ़ना है, आइबूना ताइबूना आबिदूना लिरब्बिना हामिदून, ये हमने सीरत में भी पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह हमने सफर से वापसी पे पढ़ते चले जा रहे थे। तो ये पढ़ते ही चले जाना है, इसकी तकरार करनी है, ठीक है। और अगर दूर के सफर से कोई मर्द आ रहा है तो उसको चाहिए कि सरप्राइज ना दें अपने घर वालों को। इस चीज को अच्छा नहीं समझा गया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसकी मुमानियत फरमाई है और ये ताकीद फरमाई है कि घर में जाने से पहले घर वालों को इत्तला दी जाए। ठीक है, जब करीब पहुंच जाए, मतलब कहीं दूर से आया है तो अब 8 घंटे का सफर करके आ रहा है तो चलने से पहले इत्तला दे दें, या फिर आप 2-4 घंटे दूर हैं तो उस वक्त इत्तला दे दें कि मैं घर आ रहा हूँ। और एकदम अचानक घर में आ धमकना, खास तौर पर रात के वक्त, इससे मना किया गया। हाँ, वैसे कोई इंसान रोज जॉब से आता है तो वो रात के वक्त आता है, घर वालों को पता ही है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एकदम अचानक किसी और दूर की जगह से, जो यानी जो घर वाले एक्सपेक्ट नहीं कर रहे उसको इस टाइम पे, वो मना किया गया है कि फिर बता के आए, चाहे रात को भी आ रहा है दिन को आ रहा है, लेकिन बता के। और सफर से वापस पहुंच के एक सुन्नत है कि मस्जिद में 2 रकतें अदा करना, जिसको आज अक्सर लोग भूल चुके हैं, तो करना ये चाहिए कि जब वापस आए अपने शहर में एंटर हो जाए तो अपनी मस्जिद के अंदर 2 रकत नमाज पढ़ के फिर घर पे जाया जाए। फिर इसी तरह सफर से वापसी पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे किया करते थे कि एक ऊंट या एक गाय ज़िबा करते थे जब मदीना वापस आते थे, या लोगों के लिए दावत का इंतजाम करते थे। इसको बल्कि बाकायदा इसके लिए अरबी में एक लफ्ज भी है कि किस तरह से ये दावत, इसका एक नाम है। तो ये सफर के कुछ आदाब थे जो हमें अपनाने चाहिए, क्योंकि हमारा सफर करना होता है अक्सर, तो इन आदाब को अपनाएंगे तो देखें कितना अजर हम कमा सकते हैं। वजालू लहू मिन इबादिहि जुज़अन, और उन्होंने बना लिए हैं अब इसके बंदों में से, यानी अल्लाह के बंदों में से, जुज़अन एक हिस्सा। यहाँ पे खास तौर पे बात हो रही क्योंकि आगे जो कॉन्टेक्स्ट बन रहा है उसके मुताबिक यहाँ पे इबाद से मुराद है फरिश्ते। यानी उन्होंने, किन्होंने, मुशरिकीन मक्का ने इस तरह से किया था कि फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दे दिया था कि ये अल्लाह की बेटी है, नाउज़ु बिल्लाह। तो जो औलाद होती है वो इंसान का हिस्सा होती है, जिसकी भी औलाद है वो उसका हिस्सा है, मशीर की औलाद उसका हिस्सा, इंसान की औलाद उसका हिस्सा, एक इसकी इसकी जिस्म का एक हिस्सा होती है ना। तो ये बताया गया कि उन्होंने बना दिया है उसके बंदों को, किसके, अल्लाह के बंदों को उसका हिस्सा बना के रख दिया कि ये उसकी औलाद है। इन्नल इंसान ला कफूर मुबीन, इंसान बहुत नाशुकरा है। कफूर, कफूर में बहुत ज्यादा माना आता है, मुबीन खुल्लम खुल्ला, यानी छुपा डका नहीं करता बल्कि खुली खुली नाशुकरी करता है अल्लाह की। ये नाशुकरी है ना, सब कुछ अल्लाह देने वाला हो और उसके बाद उसकी औलाद करार दे के और उनके आगे झुकने शुरू कर दी, उनके बुत बना लिए कि ये देवियां, वो देवियां क्या थी, वो फरिश्तों की सूरतें बनाई हुई थी, ये फलां फरिश्ता ये अल्लाह की औलाद ही है ना, उसे बिल्ला। तो जब ये कितनी बुरी बात है कि जब कोई ये कहता है कि अल्लाह की औलाद है तो उसने समझ लें कि अल्लाह में कमजोरी को साबित किया है, नक्स को साबित किया है, क्योंकि औलाद इंसान की कमजोरी होती है ना। इसी तरह किसी की भी औलाद मुकर्रर कर देना उसकी कमजोरी है, और फिर औलाद बाप का हिस्सा होती है, इसका मतलब नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह का हिस्सा है ये। और फिर जो इंसान होता है अपनी औलाद के ऊपर एक तरह से मोहताज होता है, एक उम्र आ जाती है कि वो अपनी औलाद के ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है। तो अल्लाह के अंदर कमजोरी इन्होंने करार दिया कि उसको औलाद की जरूरत है जिसके ऊपर उसको डिपेंड करना है, नऊज़ु बिल्लाह। ये कितनी बुरी बात है जो ये करते हैं, अल्लाह ने इनको इतना कुछ दिया ये अल्लाह को ये जवाब दे रहे हैं, अमित तखज़ मिम्मा यखलुकु बनात। अब यहाँ पे खास तौर पे, वैसे तो औलाद ठहराना अल्लाह की बहुत कबीरा गुनाह है, शिर्क है, लेकिन खास तौर पे यहाँ पे चूंकि फरिश्तों की बात आ रही है जिनको उन्होंने करार दिया था कि अल्लाह की बेटियां हैं, इसलिए यहाँ पे बयान किया गया। यहाँ उसने बना लिया है मिम्मा यखलुकु बनातिन, इसमें से जो पैदा करता है बेटियां, वह असफाकुम बिल बनीन, और चुन लिया है तुमको 7 बेटों के। यानी उसने तो जो वो खुद ही पैदा करता है, उसने खुद ही बेटियां और बेटे लोगों को दिए हैं, उसने अपने लिए बेटियां चुन ली और तुमको बेटे देता है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो लोग, आपको पता है उनका माशरा कैसा था, उनके लिए बेटी तो एक गाली थी, बेटियों को तो जिंदा दरगोर कर देते थे, अपने लिए बेइज्जती तक समझते थे और बेटों की बहुत चाहत रखते थे। तो उसने जो खुद हर चीज का पैदा करने वाला है, उसने जिसको तुम नाकिस समझते हो अपने लिए, जिसको तुम अपने लिए बुरा समझते हो, वो तो उसने अपने लिए रख लिए और तुम्हें बेटे दे दिए। ये तुम कहना चाहते हो। वाइजा बुशीरा, हालांकि जब कुछ खबरी दी जाती है, अहदुहुम उनमें से किसी एक को, बीमा दरावा ले रहमानी मसलन, जिसकी उन्होंने रहमान के लिए मिसाल बयान की। किसकी उन्होंने रहमान के लिए मिसाल बयान की? बेटी की ना, बेटी की। जब इनको खुद खुशखबरी दी जाती इनमें से एक को, बीमा दरावा ले रहमानी मसलन, इसको ब्रैकेट में कर लें, इसके नीचे लिखे बेटी, बेटियां, या जिसकी ये रहमान के लिए मिसाल बयान करते हैं, यानी बेटियां बयान करते हैं, जब इनको उसकी खुशखबरी दी जाती है उन बेटियों की, जब इनके यहां बेटियां पैदा होती हैं, ज़ल्ला वजहू मुसवद्दन, तो चेहरे इनके हो जाते हैं काले सिया, वह हुआ कदीम, और वो गम के घूंट पीने लगता है कि अब मैं करूं तो करूं क्या, इतना गम होता है कि अब ना जिसको कहें कि क्या करूं इसके साथ, इसको जिंदा दफन कर दूं कि इसका मैं गला घूंट दूं कि इसके साथ मैं क्या करूं, ये तो एक मेरे लिए यानी बेइज्जती की चीज पैदा हो गई है, लोगों को कैसे बताऊं कि ये मेरे लिए मेरे घर बेटी पैदा हो गई। जब खुद इनको खुशखबरी दी जाती है, यानी बेटी की, इसका मतलब है पैदाइश खुशखबरी की बात है, ये जिल्लत की बात नहीं है। लोग हमारे यहाँ बेटों की पैदाइश पे मुबारकबाद देते हैं, लड्डू बांटते हैं, कहते हैं बेटी की पैदाइश पे क्या मुबारकबाद दी, इस पे क्या मिठाई बांटे, यानी कितने हमारे, जबकि कुरान कहता है ये बशारत है, इनको जब बशारत मिलती है इसकी तो फिर गुड न्यूज मिलती है इसकी बेटियों की, तो इनके अपने तो हाल ये हैं कि इनके चेहरे स्याह हो जाते हैं, यानी गम के मारे और गम के घूंट पीने लगता है, और अल्लाह के लिए कहता है बेटियां, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं है। एक बात समझ ले कि बेटियां अल्लाह के लिए करना बुरा है तो बेटे कर दो तो ठीक है, नहीं, बल्कि इनके इस अकीदे का रद्द किया जा रहा है कि देखो, एक तो तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो, शिरक ही हो गया ना, शरीक ही ठहराना हो गया जब औलाद ठहराई है अल्लाह की, तो औलाद माँ बाप की शरीक होती है, बाप की सारी जायदाद और जो भी उसकी चीजें होती है सब में शरीक होती है, तो एक तो तुमने अल्लाह के साथ शिर्क किया, ये कितनी बड़ी गुनाह की बात की तुमने, नंबर वन। ये नंबर टू इनका जुर्म क्या था, दोहरा जुर्म था ना, नंबर टू जुर्म क्या था कि जो चीज अपने लिए नहीं पसंद की उसको अल्लाह के लिए पसंद किया, यानी तुम्हारे नजदीक अल्लाह की ये वैल्यू है, तुम्हें अल्लाह की ये कदर है, ये सोचे ना कि जैसे हम अपने लिए कोई चीज वो कि अच्छी से अच्छी चाहते हैं, लेकिन जब अल्लाह के रास्ते में देते हैं तो बिल्कुल ही रद्दी किस्म की चीज जो हम देखना भी नहीं चाहते या जो बिल्कुल हमारे लिए गार्बेज में करने वाली होती, वो कहते हैं ये अल्लाह के रास्ते की है, तो इसका मतलब हमने क्या अल्लाह की कदर जानी, हम अल्लाह को ये चीज देना चाहते हैं, क्योंकि जो आप हम सदका करते हैं वो भी अल्लाह के रास्ते के अंदर देना, अल्लाह को देना है ना, ये अल्लाह के लिए देना है ना। तो इससे पता चलता है इंसान की साइकोलॉजी का कि उसके नजदीक अल्लाह की क्या अहमियत है, यानी तुमने ये चाह कि वो चीज जिसको तुम अपने लिए इतना बुरा समझते हो कि तुम्हारे चेहरे काले हो जाए और तुम गमजदा हो जाओ, उसको तुम अपने लिए तो नहीं चाहते और रब कायनात के मालिक के लिए वो चीजों को अप्रोप्रिएट समझते हो, यानी जो तुम्हारे लिए इतनी बुरी, आप समझ रहे हैं बात को, कोई इससे ये ना समझे कि पता नहीं बेटियों का पैदा होना यहाँ पे ये इसको बुरा कहा जा रहा है, नहीं, इसको तो बुशरा कहा जा रहा है, बल्कि यहाँ पे रद्द किस बात का है कि जिसको तुम अपने लिए अच्छा नहीं समझते वो अल्लाह के लिए करते हो, कम से कम अगर अल्लाह के लिए तुमने करना ही थी तो तुम ये पता चलता कि हाँ हम अल्लाह के लिए सबसे अच्छी चीज को करते हैं, जो कि हम वो भी शिर्क होता, लेकिन कम से कम एक अल्लाह की ताजीम तो होती तुम्हारे दिल के अंदर, पता चलती तुमने तो अल्लाह की कोई ताजीम भी नहीं जानी। हमने पहले पढ़ा है ना सूरह शूरा में, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबू लिमन यशाउ इनासा व यहबू लिमन यशाउ ज़ुकूरा, पिछली हमने सबक में पढ़ा कि अल्लाह जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है बेटे देता है। इस उस आयत में आपने एक बात नोट की कि अल्लाह ताला ने बेटियों का जिक्र पहले फरमाया, इसीलिए बाज़ उलमा कहते हैं जिस औरत ने बेटी, जिसकी सबसे पहले बेटी हुई है वो औरत भी उसका एक मकाम है, वो भी यानी एक अफजल फजीलत है। तो ये कि अल्लाह ताला ने उसको जो कमजोर है, उसको जो यानी कुछ नहीं समझी जाती, उसकी इतनी अहमियत अल्लाह ताला ने यानी की कि उसका जिक्र पहले फरमाया और लड़के का जिक्र बाद में अल्लाह ताला ने फरमाया। तो यहाँ पे हम इसी चीज को देखते हैं फिर यहाँ पे कि बेटी की पैदाइश होना इसके ऊपर भी कोई किसी को अफसुर्दगी की जरूरत नहीं है, जो उनकी इस चीज थी कि उनके चेहरे से आ जाते थे और गम से भरे होते थे, इसकी भी मुजम्मत आ गई है, इसको भी बुरा समझा गया, क्योंकि वो है खुशखबरी और उसको वो अपने लिए क्या समझ रहे हैं, बुरी खबर, जैसे कि कोई मर गया हो उसकी खबर होती है, इसको इस तरह से समझ रहे हैं। तो ये एक जाहिलाना आदत थी काफरों की। इसको हमारे यहाँ तो कम अज कम भी होगा, हम हिंदुओं के साथ रहते रहे तो हमारे यहाँ भी वही चीजें अपनाई जाने लगी और इसको अपने लिए हमने भी समझ लिया कि बेटी तो एक बोझ है। और कुछ लोगों ने अब उनको कुछ और नहीं मिलता, जब उनको कहा जाता है कि नहीं ऐसे नहीं आपने करना, तो कहते नहीं नहीं असल में हम बेटियों से नहीं, हम तो बेटियों के नसीब से डरते हैं। तो बेटियों के नसीब से डरते हैं, बेटों के नसीब से नहीं डरते? आपको क्या पता कि बेटा क्या कल को सताए, क्या करे, क्या उसके नसीब निकले, किस तरह से माँ बाप उसकी वजह से तकलीफ उठाएं, क्या उससे नहीं डरते? लेकिन बेटियों के नसीब से खास तौर पर डरते हैं। अब उसको उन्होंने किस तरह ट्विस्ट दे दिया, नहीं इस वजह से। हालांकि असल बात वही है कि वो जो हमारी पीछे की एक साइकी चली आ रही है कि बेटी तो बस क्या है, ये हमारे क्या काम आने वाली है, इसने कल को अगले घर चले जाना है, हमने इसका क्या करना है। इमाम अहमद जो थे उनके बेटे साले बयान फरमाते हैं कि जब उनके यहाँ बेटी की विलादत होती तो फरमाते थे अंबिया बेटियों के बाप थे, यानी अंबिया के बेटियां हुई थी शोएब अलैहिस्सलाम के, देखिए वो बेटियां थी जो वो एक मूसा अलैहिस्सलाम से जिसकी शादी हुई थी, लूत अलैहिस्सलाम की बेटियां थी, तो वो बेटियों के बाप होते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों से कितनी मोहब्बत करते थे, इससे अंदाजा कीजिए कि अगर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब आती थी तशरीफ लाती थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर उनका इस्तकबाल फरमाते थे, और जब वो आती थी तो उनको बोसा दिया करते थे, उनका हाथ पकड़ लेते थे और लाके मजलिस में बिठाते थे। कितने शफीक वाले थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कहीं सफर में जाने लगते थे तो लास्ट में अपनी बेटी को मिलके जाते थे, जब वापस आते थे सबसे पहले अपनी बेटी के घर जाते थे, अपनी बीवियों के घर जाने से भी पहले अपनी बेटियों की जो जिंदगी थी उनके मामलात में दिलचस्पी लेते थे, खुसूसी तवज्जो रखते थे। ऐसे नहीं कि मैं तो इतना बिजी हूं मुझे क्या पता तुम्हारे घर में क्या हो रहा। बेटियों की जब वफात हुई थी तो इस कदर शिद्दत गम की वजह से आंसू बहते रहे थे, लेकिन जुबान से सबर के खिलाफ कोई एक लफ्ज भी नहीं निकला था। उनकी तजहीज़ तकफीन तदफीन सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई थी। अपनी बेटियों के बच्चों को कितनी अहमियत देते थे, अपने नवासों से कितनी मोहब्बत करते ये आप सबको पता है, कैसे कंधों पे उठा लेते थे, कैसे उनको लेकर चलते थे, कैसे कभी नमाज वो पढ़ रहे थे तो तब अपनी नवासी को कंधे पे उठाया हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तब लोगों को नमाज पढ़ाई। अब बेटी की भी बेटी वो तो और भी ज्यादा नहीं भाती, मेहमानों के सामने भी नवासों को बोसा देते थे, नवासों को गिरते हुए देख लिया था तो खुतबा छोड़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और जाके उनको उठाया, और अपने नवासों को अपने यानी अपनी फैमिली करार दिया, उनके लिए दुआएं करते थे। आज कहते हैं कि नवासे तो हमारे नहीं है, पोते हमारे हैं, नवासे हमारी थोड़ी औलाद है, उनसे थोड़ी हमारी नस्ल चलनी, वो तो उन लोगों दूसरों के हैं, लेकिन आपने उनको अपनी फैमिली कहा, उनको अपना अहल फरमाया, नवासों को हंसाते थे खिलाते थे, मतलब नवासों के लिए जो आप देखे उनके लाड हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पुश्त पे सवारी भी कराई अपने नवासों को, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ना अपनी बेटियों को हकीर समझा, ना अपनी बेटियों के औलादों को गैर समझा। हमारे तो हाँ बेटी की औलाद को कभी भी कोई नहीं समझता कि ये भी मेरी फैमिली है, ये नहीं समझा जाता। तो इसी तरह इमाम इब्ने कय्यम लिखते हैं कि आदमी के लिए जायज नहीं है कि बेटे की मुबारकबाद दे और बेटी की मुबारकबाद ना दे पैदाइश पे, यानी यहाँ तो दोनों पे मुबारकबाद है यानी दोनों पे ना दे, इसलिए कि फिर ये जाहिलियत का तरीका हो जाता है कि अगर सिर्फ बेटे के ऊपर तो मुबारकबाद है और बेटियों के ऊपर नहीं है। اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، اور بلکہ یہ فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کریں، انہیں اپنی استطاعت کے مطابق کھلائے پلائے اور پہنائے، تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ کے درمیان آڑ بن جائے گی، پردہ بن جائے گی، حائل ہو جائے گی۔